विद्याओं का कई दिनों से आप लोग श्रवण कर रहे हैं। भगवान की अनंत लीलाएं हैं, भगवान के अनंत अवतार भी हैं। भगवान के अवतार को गिना नहीं जा सकता है। भगवान एक होकर के भी अनंत रूपों में लीला करते हैं, इसलिए भगवान की लीलाएं अनंत हैं। अनंत लीला भगवान अनंत लीला ही कहा जाता है। जैसे समुद्र में अनगिनत लहरें उठती हैं, उसी तरह भगवान हर ब्रह्मांड में, हर लोक में, हर कोई न कोई लीला करते रहते हैं। भगवान का कहीं जन्म उत्सव लीला होता है, कहीं गोचारण लीला करते हैं, कहीं कल्प भक्त लीला करते हैं। भगवान नित्य लीला, नित्य लीलाएं चलती रहती हैं, कभी इस ब्रह्मांड में, कभी अन्य ब्रह्मांडों में। तो भगवान अनंत ब्रह्मांड के नायक हैं और अनंत उनकी लीलाएं भी हैं। इस तरह अनंत लीलाओं को प्रस्फुटित करने के लिए प्रत्येक रोज कोई न कोई लीला भगवान करते हैं, क्योंकि भगवान लीलाधारी हैं। भगवान के पास करने के लिए कोई कार्य नहीं, केवल भगवान लीला में विहार करते हैं। ये वृंदावन की भूमि में भगवान जो लीला संपन्न किए हैं, तो नित्य लीला है। आज भी वृंदावन में लीलाएं होती रहती हैं। कवि ने लिखा कि आज हूँ श्याम को हूँ, कुंज में तीरथ होनी है, भुज भरी फेंकी जो कुछ ही उन्मत है। कवि ने लिखा कि आज भी वृंदावन में भगवान की लीलाएं होती रहती हैं। जैसे सेवा कुंज है, विधिवन है, नीरा जी हैं, यमुना जी हैं, नंदगांव है, बरसाने हैं, मधुपुरी है, वृंदावन है, तो भगवान कोई न कोई लीला करते रहते हैं। भगवान की जो अंतकालीन लीला है वो होती है। तो भगवान लीलाएं और रसमय हो जाती हैं। प्रसंग की आवृत्ति होती है तो प्रसंग विरस नहीं होता, बल्कि और सरस हो जाता है। कवियों ने भगवान के वेणु के विषय में बहुत किताबें लिखी हैं। वेणु पर बहुत सारे कवियों ने अपना पदगान किया, लेकिन फिर भी उसमें रस की औनति नहीं होती, रस की अभिवृद्धि होती जाती है। जैसे वैष्णव जन तिलक की आवृत्ति करते हैं, प्रत्येक रोज तिलक लगाते हैं, लेकिन तिलक लगाने में कोई क्षति नहीं होती है, बल्कि हम रोज दुर्घा से तिलक लगाते हैं। वैष्णव जन प्रत्येक रोज तिलक की आवृत्ति करते हैं और भगवान अवतार की आवृत्ति करते हैं, और उनके भक्त लोग जो विद्वान भक्त हैं, जो लीला सकते हैं, गोविंद के मूल कीर्तन में आ सकते हैं, उनके लीलाओं की आवृत्ति करते हैं। इस तरह से भगवान की लीलाओं की आवृत्ति बार बार होती है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि एक ही प्रसंग को कई लोग कहते हैं, लेकिन फिर भी उसमें रस की औन्नति नहीं होती, बल्कि उन्नति होती है, रस और बढ़ता है। तो आज भगवान के वेणु के विषय में हम लोग श्रवण करेंगे। भगवान वेणुधारी, वेणु हमेशा धारण करते हैं। भगवान के वेणु के संसर्ग से अनेक नाम है, वंशीधारी, वेणुधर, वेणु विलासी, ऐसे बहुत सारे नाम हैं वेणु पर। भगवान जैसे आप ही हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद, जैसे भगवान आदि वैसे वेणु भी आदि वाद्य है। सर्वप्रथम वेणु से ही सारे वाद्य के संतों की सृजना हुई है, क्योंकि भगवान के साथ वेणु आदि काल से, और वेणु से जितने भी ईश्वर हैं, राग रागनिया हैं, वेणु से प्रकट हुए हैं। इससे पहले और कोई वाद्य नहीं था, बल्कि वेणु के बाद ही सारे वाद्य की सृजना हुई। तो वेणु विलासी भगवान श्री कृष्ण देणु को जब अपने मुख पर धारण करते हैं तो देणु उस संध्यामृत का जब पान करती है और जब भगवान उसमें रौ भरते हैं, जब ध्वनि प्रेरित करते हैं तो ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में छा जाती है और बंसी की वेणु के ध्वनि में सारा ब्रज जो है स्थापित हो जाता है और यहाँ तक कि जो चर है अचर हो जाते हैं और जो अचर है वो चर हो जाते हैं, जो स्निग्ध है वो शुष्क हो जाता है, जो शुष्क है वो गीला हो जाता है, जो तरल है वो ठोस हो जाता है। ऐसा बंसी का प्रभाव तो बंसी ऐसे गोलोक में भगवान की सखी है, बंसी प्रिय सखी है। दूसरे पुराणों में वर्णन है कि बंसी जो है ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन है कि बंसी जोग माया का होता है, जोग माया है और भगवान का ब्रह्म नाम है। और ब्रह्मनाथ वे सारा जगत के रूप से अधीन है, वेणु विलासी भगवान श्री कृष्ण जब अपने अघरागर पर वेणु को धारण करते हैं और गोचारण के लिए जब चलते हैं बाल बालों और कृष्ण के साथ, तो जैसे ही वृंदावन के वनों में प्रवेश करते हैं और बंसी वादन करते हैं तो यह बंसी की आवाज सुनकर के सारी ब्रज की स्त्रियां अपना काम शुरू करके चल देती है। तेणु गीतम स्मरोदय काशी परोक्षम कृष्ण से स्वस्थी वर्णया। यह ब्रज की तरुणी स्त्रियों ने कृष्ण की बंसी का गीत सुना तो उनमें काम उत्पन्न हो गई, तो उनमें से कुछ स्त्रियां अपनी सखियों से काम करने कृष्ण के गुणों का बखान करने लगी। तब वर्णित्वा मारब्धा स्मरण से कृष्ण से स्थितम ना सकन स्मरण वेगेन विक्षिप्त मनुष्यों देखो। गोपियां कृष्ण के विषय में बातें करने लगी किंतु जब उन्होंने कृष्ण के कार्यकलापों का स्मरण किया तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे राजन, काम ने उनके मनों को विचलित कर दिया जिससे वे कुछ भी नहीं कर पाए। बंसी के आवाज से गोपियों के अंदर काम उत्पन्न हो गया, तो भौतिक काम नहीं आध्यात्मिक काम। तो काम क्या है? कृष्ण से मिलने की कामना। और भगवान बंसी में यही संकेत देते हैं, कभी कभी गिरिराज जी के ऊपर, कभी जमुना जी के किनारे ऊंचे वृक्ष के शिखर पर चढ़ करके भगवान संकेत देते थे कि मैं यहाँ, और गोपियां आकर के भगवान का दर्शन करती हैं। ऐसा एक विद्यापति लिखे हैं कि भगवान कभी जमुना किनारे बंसी में संकेत देते हैं और अपने प्रिय ग्वाल बालों को और गोपियों को आमंत्रित करते हैं। भगवान बंसी से सब कार्य संपन्न कर लेते हैं, बंसी के ध्वनि से सारा ब्रज जो है स्निग्ध हो जाता है, चिंतित हो जाता है। तो भगवान एक दिन यमुना किनारे बंसी बजा रहे थे, नंदक नंदन कदम्ब तरु तले धीरे धीरे मुरली बजा, समय सकेत निकेतन बैठक बेरी बेरी बोल पठाए। तो बार बार अपने ध्वनि से ध्वनि को गोपियों तक पहुंचा रहे थे और अपने गोपियों को सखाओं को बुला रहे थे। भगवान यमुना किनारे गोचारण में को सखाओं से सब नृत्य करते हैं, यमुना जी में जल विहार करते हैं, तो अपने समस्त सखाओं को और गोपी जनों को आमंत्रित करने के बंसी में गीत गा रहे हैं। समय संकेत, समय का संकेत दे रहे थे कि अब समय हो गया है। समय संकेत निकेतन बैसल बेंजन गोल पठा स्वर्णमतिमा सुमति मधुसूदन सुनहु वचन की सुमोरा गोरख बेचक अवई की जाए चंदन कुछ बनना। जो मथुरा वृंदावन से लोग गोरख बेचने के लिए जाते थे उन ओर से भगवान पूछते थे, तुमने सुबल को मधुमंगल को सखाओं को देखा है, तुमने राधा रानी को ललिता विशाखा को देखा है, इधर जाते हुए गोरख बेचने वाली गोपियों से या गोपजनों से भगवान मिलते हैं। तो विद्यापति कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों को के बिना उसको नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, भक्तों के साथ में हमेशा वृंदावन में गोचारण लीला करते हैं और उनके साथ में पान का कलेवा करते हैं और जमुना जी में जल क्रीड़ा करते हैं। तो कभी कभी उनके जल नहीं मिलने से वो बंसी में संकेत देते हैं। ये बरसाने और दंड गांव के बीच में एक साकेत बन है जहाँ भगवान बंसी में संकेत करते थे कि मैं यहाँ हूँ। अब कभी कभी गिरिजा जी के ऊपर शिखर पर चढ़ जाते थे और बांसुरी बजाते थे, जिसे सब लोग देखते थे कि भगवान कृष्ण गिरिजा जी हैं, और नहीं तो यमुना जी में ऊंचे वृक्ष के ऊपर चढ़ते थे, सबको अपना दर्शन देने के लिए बंसी से सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे। भगवान कहते हैं बंसी धारण करते हैं तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि बरहा पीतम नटवर बपुर परणयो कर्ण काल विभ्रत वासा कनक कपुषम वै जयंती चमाला रंधा किरण अधर सुधया उदयन गोप वृंद वृंदारण्यम शपथ रमणम प्रावंद गीत कीर्ति। अपने सिर पर मोरपंख का आभूषण, अपने कानों में नीले कर्ण का फूल, स्वर्ण जैसा चमचमाता पीला वस्त्र तथा वैजयंती माला धारण किए भगवान कृष्ण ने सब श्रेष्ठ नर्तक का दिव्य रूप प्रदर्शित करते हुए वृंदावन के वन में प्रवेश करके अपने पद चिन्हों से इस रमणीय भूमि को और रमणीय बना दिया है। अपने होठों के अमृत से अपने बंसी के छेदों को भर दिया है और ग्वाल बालों ने उनके जस का गान किया है। भगवान बंसी के बंसी में बांसुरी में सात सात छेद होता है और संगीत में भी सात स्वर होते हैं, सारे गानों पद निशा। तो सात स्वरों में से सब राग रागिणियों को भगवान प्रकट करते हैं और जब भगवान बांसुरी को अपने हाथ से उठाते हैं उसके पहले सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान का श्रृंगार कैसा है तो बरहा पीतम नटवर भगवान मोर पंख धारण करते हैं और एक नृत्यकार की तरह एक श्रेष्ठ नटकर की तरह वृंदावन के मंच पर उपस्थित होते हैं और अपने कानों में नीले पुष्प धारण किए हैं और अनेक प्रकार के आभूषण धारण किए हैं और पीताम्बर धारण किए हैं जो स्वर्ण जैसा चमकता है और उनके गले में वैजयंती माला। इस तरह से वृंदावन में वृंदावन के वन में प्रवेश कर रहे हैं जिससे वृंदावन और सुशोभित हो गया है और बांसुरी में अपनी अधरामृत को भर रहे हैं और ग्वाल बाल उनके जस का काम कर रहे हैं। तो गोपियां इस तरह से बंसी की आवाज सुन करके आपस में कृष्ण के लीलाओं का प्रखान कर रहे हैं। इसी देणु रवम राजन सर्वभूत मनोहरम श्रुत्वा व्रज प्रिय सर्वा वर्णन तो धीरे धीरे। हे राजन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे राजन जब व्रज की ज्योतियों ने सभी प्राणियों के मन को मोह लेने वाली कृष्ण की बंसी की ध्वनि सुनी तो वे एक दूसरे का आलिंगन कर आलिंगन कर उसका बखान करने लगे। भगवान की बंसी का चमत्कार ब्रज के समस्त चर अचर अंदर पिंजर जैसा समस्त प्राणियों पर और गोपियों पर ही नहीं, यहाँ तक कि पशु भी जो जंगल में घास खाते हैं बंसी की आवाज़ सुन करके वो घास खाना बंद कर देते हैं, जो बछड़े दूध पी रहे हैं दूध पीना बंद कर देते हैं, और गाय बंसी की ध्वनि सुनकर दोनों कानों को ऊपर कर लेती है और मौन हो जाती है, और पक्षी जो कलरव कर रहे हैं वो बंसी की आवाज सुन करके मौन हो जाते हैं। मुनि जी कह तो बंसी के अधीन सब चर अचर सारा ब्रजमंडल बंसी के अधीन हो गया है। इसलिए बंसी के शब्द को ब्रह्ममय कहा गया है। शब्द ब्रह्मामयम देवरूपाभियंता मुखाम्बुजम, भगवान के मुखाम्बुज पर बंसी का जो आवाज निकलता है, जो स्वर निकलता है वो ब्रह्ममय। शब्द ब्रह्मामयम देवरूपाभियंता मुखाम्बुजम अर्थात श्री कृष्ण अपने मुख कमल पर शब्द ब्रह्म रूपी वेणु को बजाते हैं। श्री कृष्ण उपनिषद के अनुसार रुद्र ने ही बंसी का रूप धारण किया है। कृष्ण उपनिषद ने कहा कि रुद्र जो है बंसी के रूप धारण किए हैं। रुद्र के दो रूप हैं, एक रौद्र अथवा रुद्र, दूसरा सिंह रूप जो संसार का मंगल करते हैं और रौद्र रूप में प्रलय करते हैं। बंसी की पूर्ण शून्यता के संबंध में बांसुरी का परिचय, बांसुरी जो है बांस की बंसी है और वो खोखली होती है, उसमें कुछ नहीं होता है। उसका एक भक्त लिखते हैं कि बांसुरी में कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं है, बिल्कुल खोखली, उसमें जो भी पदार्थ की भावना नहीं है, केवल आत्मस्वरूप की सिद्धि है उसमें। क्योंकि बांसुरी सिर से मुख से सिर तक खोखली है। जैसे लोगों में अनेक वाद है, साम्यवाद, निर्विशेषवाद, अनीश्वरवाद, देहात्मवाद, सब लोग बात से ये, लेकिन बंसी में केवल आत्मबोध है, अपने स्वरूप के अलावा बंसी में और कोई भाव नहीं है। बंसी बिल्कुल अपने स्वरूप में है, बिल्कुल बंसी अपने अंदर से जो अनात्म भाव है, जो पदार्थ में आत्म की भावना, उसको निकाल दिया है, बिल्कुल बंसी शुद्ध हो गई, इसलिए भगवान इसको कोर पर धारण करते हैं। बंसी की पूर्ण शून्यता के संबंध में स्वामी राम के शब्द विशेष रूप से उल्लेखनीय है। The flute is empty from head to foot। बंसी एक सिरे से दूसरे तक पहुंचा खाली है। मैंने बंसी अपने को उन सभी से रहित कर लिया है जो मेरे स्वरूप से भिन्न है, अर्थात मैंने अपने को आत्मरूप को अनात्म भाव से रहित कर लिया है। बंसी को अदर पर धारण करने का अर्थ है हृदय की शुद्धि, मन को परमात्मा की ओर अभिमुख करना, उसी प्रियतम को सब कुछ समर्पित कर देना। राधा जी ने एक बार कहा था कि हे जीवन धर्म, तुम्हारी इस मुरली ने हमारी लज्जा सर मर्यादा चुरा कर हसी कराई है, अतः अवसर पाकर उसे चुरा कर जमुना जल में फेंक दूंगी। राधा की युक्ति के भय से मुरली को पीताम्बर से ढककर गोद में लेकर श्री कृष्ण निद्रित हो गए। चोरी का अवसर पाकर दोनों चरणों को धीरे धीरे ढकते हुए, नुपुरों को मुख बनाते हुए, स्वर्ण कंकणों की झंकार को रोकते हुए राधा ने बड़ी चतुरता से मुरली को उड़ा लिया। श्री कृष्ण के बहुत प्रार्थना करने एवं सहेलियों के आग्रह पर राधा रानी ने मुरलीधर को वापस कर दिया। ऋग्वेद सामवेद के अनुसार यस्तानो तान मारुवत भूरिय स्पष्ट करतो तदिंद्रो अर्थ चेतति युवेन विष्णु रेजति। ऋग्वेद में और सामवेद में वर्णन है कि परम सौभाग्यशाली भगवान श्री कृष्ण मुरली के प्रति इतना आकृष्ट है कि मुरली के बिना उनको चैन नहीं आता, और मुरली के बिना उनकी लीला संपन्न भी नहीं होती है। भगवान हमेशा मुझे लिए रहते हैं। गायित्व गायित्व षड्यंत्र कर्म क्षण ब्रह्मणस्व चक्र उद्वंस विवेकिरे से समस्त जगों के आराध जग पुरुष श्री कृष्ण वेद गाता शाम गाता लोग आपका ही गुणगान करते हैं और सोम रस मधु भी दुग्ध आदि पदार्थों से पूजा करने वाले भक्त लोग सूर्य मंडल स्थित आपको ही पूजते हैं। श्री कृष्ण आपके एक एक रोम कूप में जो अनंत ब्रह्मांड है उन ब्रह्मांडों के अनेकानेक ब्रह्मा लोग इस वृंदावन में स्थावर जंगम अनेक रूपों से स्थित हैं। वे ब्रह्मा लोग आपकी बंसी बजाने के लिए प्रार्थना प्रेरित करते हैं ऐसा मालूम पड़ता है। शायद ब्रह्मा भी बंसी के आवाज के अधीन होते हैं, शिव भी बंसी के अधीन है। तो ऐसा कहा गया है श्रुति प्रतिपा निखिल रसावृष्टि रूप पर ब्रह्म जो भगवान श्री कृष्ण का गुणानुवर्णन ही मनुष्य के सर भी दक्षता का अभिच्छेद फल है। उसमें भी अस्मोद मधुर वृंदावन चंद्र की चतुर्धा माधुरी धाम माधुरी रूप माधुरी लीला माधुरी एवं वेणु माधुरी यदि वाणी का विषय बन जाए तो जीव के सद्भाग की प्रशंसा सुर समाज के मध्य स्वयंभू शंभु नारद आदि भी करते हैं। भगवान में मुख्य रूप से चार माधुरी है, माधुर्य है, धाम माधुरी, लीला माधुरी, गुण माधुरी और वेणु माधुरी। वेणु माधुरी जो है, वेणु माधुरी के विषय में कहा गया है कि भगवान जब बंसी बजाते हैं तो शिव जी का भी ध्यान टूट जाता है और ब्रह्मा जी का भी ज्ञान विचलित हो जाता है। जो हमेशा ज्ञान में रमण करते हैं उनका भी ज्ञान विचलित हो जाता है। भुवन मोहन सर्वाकर्षक प्रसाद वेणु गायक रास विलासी माधुर्य सिंधु राधा रमण के वेणु के विषय में कौन नहीं जानता। मदन मोहन की बंसी की आप प्रशंसा करें चाहे गाली दें साप दे तो भी आपका सब अलौकिक रसपूर्ण हो जाएगा। कभी कभी गोपियां बंसी को गाली देती थी, ये बंसी जो है ऐसे है जब बजती है तो रंधन करते समय जो लकड़ी है गीली हो जाती है और आग ठंडी हो जाती है और जो जो जिस काज में काज करना भूल जाती है। कोई श्रृंगार कर रही है तो श्रृंगार करना छोड़ देती है, कोई खाना बना रही है तो खाना बनाना भूल जाती है, कोई बच्चों को दूध पिला रही है तो दूध पिलाना भूल जाती है, कोई वृद्ध गुरुजनों की सेवा कर रही है तो वो काम छोड़ देती है और कृष्ण के तरफ मुड़ जाती है। बंसी सबको कृष्ण की ओर आकृष्ट कर लेती है। कर्षिति इति कृष्ण, कृष्ण का एक नाम है जो सबको अपने तरफ कर्षति खींच लेता है। उसी तरह बंसी भी कृष्ण के शब्द ब्रह्म के रूप में है। भगवान के जो शब्द हैं जो दिव्य शब्द हैं वो बंसी से आपूरित होते हैं प्रकट होते हैं तो सबको आकृष्ट कर लेता है। गोपियां बंसी को लाना देती है बंसी के प्रति, तुम बजती हो तो उनों का सारा कार्य जो सांसारिक जो व्यवहार है बंद हो जाता है, अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों कार्य रुक जाते हैं। कि मान ये धर्म की कार्य कर रही है पूजा उपासना तो भी रुक जाता है, कोई अर्थ के काम है वो दोहन कर रही है तो कार्य भी रुक जाता है, अर्थ का काम भी रुक जाता है, अर्थ धर्म मोक्ष कोई मुमुक्षु है मोक्ष के लिए कुछ कर रहे तो कार्य भी भूल जाते हैं। तो गोपियां कहती हैं कि हमारा सब काम ठप हो जाता है बंसी के चलते, ये बंसी अगर हम लोग के हाथ में लगे तो इसको हम लोग तोड़ करके जमुना में बाहर देंगे। फिर कभी गोपियां कहती हैं कि बंसी ने क्या सब किया है कि हमेशा कृष्ण इसको गोद पर धारण करते हैं, कृष्ण के मुखामुख का बंसी पान करती, इसने क्या तप किया है, ये बहुत इसका भाग्य है। ये गोपी कहती है कि अछन वताम फल मिदम न परम विदाम, अछन वताम फल मिदम न परम विदाम, सख्या पशु नन विवेश एतोर वयस नहीं, भक्तम ब्रजेश सुतयो रणवीर दृष्टम, यरवा निपीत मनोरक्त कटाक्ष मोक्षम। गोपियों ने कहा कि हे सखियों, जो आंखें नंद महाराज के दोनों पुत्रों के सुंदर मुख मंडलों का दर्शन करती हैं, वे नीचे ही भाग्यशाली नहीं है। जय भी वे दोनों अपने मित्रों से घिर कर तथा गौओं को अपने आगे आगे करके जंगल में प्रवेश करते हैं, तो अपने मुख में अपनी बंसियां धारण करके वृंदावन वासियों को प्यार भरी चितवन से देखते हैं। जो आंखों वाले हैं उनके लिए हमारी समझ में देखने की इससे बड़ी अन्य कोई वस्तु नहीं है। और इस तरह से चूत प्रवास वरहस बको पलाच माला मुद्रित परिधान विचित्र वेश, तरह तरह के आकर्षण परिधानों के ऊपर अपनी मलाएं डाले, मोर पंख कमल कमलिनी आम की कोपरों तथा पुष्प कलियों के गुच्छों से अपने को अलंकृत किए हुए हैं। कृष्ण तथा बलराम ग्वाल बालों की टोली में शोभायमान हो रहे हैं, वे नाटक मंच पर प्रकट होने वाले श्रेष्ठ नर्तक की तरह दिख रहे हैं। कहते हैं कि वृंदावन की भूमि धन्य है जो पूरे पृथ्वी के सौभाग्य का वर्णन कर रही है। वृंदावनम सखी भूव वितनोति कीर्ति, वृंदावन समस्त भूमंडल के भाग्य का वर्णन करने वाली भूमि है, क्योंकि भगवान वृंदावन में विहार कर रहे हैं। कृष्ण बलराम अपने चरण कमलों से वृंदावन के ऊपर चल रहे हैं, लीला कर रहे हैं, गोचारण लीला कर रहे हैं, बंसी वादन लीला कर रहे हैं, यह भूमि धन्य है। इस तरह से गोपियां कृष्ण को बंसी की ध्वनि सुनकर कृष्ण को मिलने के लिए जंगल में जाती हैं, अर्धरात्रि में कृष्ण से मिलने के लिए जाती हैं। एक कवि हुए हैं हमारे बिहार के, सिपाही पांडे मनमोह जी, उन्होंने लिखा है कि बंसी जो है वो वेणु गीत से उन्होंने लिखा है कि जब भगवान बंसी लेकर के जब बजाते हैं तो क्या सुंदरता होती है। तो ठीक वेणु गीत का उन्होंने अनुवाद किया है। कामर कान करे लकुटी सिर मोर के पाख मनोहर राजे, लेनु चरावत नाच दयावत गोकुल के रज भाल बिराजे, कोठन बिछिलिए मुरली कटि में हरि वाणी पीताम्बर साजे, आखिन रूपन धारि थके मंदोरी ब्रज में है प्रेम राजे। अरे भगवान जब मोर पुंख धारण करके और जो सबके मन को मोहने वाली मुरली को जब बजाते हैं और गोचारण में जब जाते हैं तो गायों के खुर से जो रस निकलता है उनके मस्तक पर मोर पंख मोर मुकुट के ऊपर और सुंदरता बढ़ा देता है, और ओठों के बीच में जब मुरली लिए रहते हैं कभी कटी प्रदेश में रखते हैं तो पीताम्बर के ऊपर ऐसा लगता है जैसे बादलों में श्याम बादलों में जैसे बिजली चमकती है। हरिवाणी पीताम्बर साज आंखें रूप निहार थके, उस रूप को देखते देखते आंख भी नहीं थकती, और कहते कि फिर इसी तरह से गोपियां का दिन बार बार पंछी बजते रहे जिसका हम लोग अनुवादन करते हैं। तो रोजिते की जय रात काटे और श्याम सखा, हमारा हिरने कविताई भरी बरदाय क्या सदा सबके मथवा रोड़े पौवा पर रहे, हरिदीन दयाल दया करके नैया और सागर पार करी, सुख शांति सदे सगरे पसरे हरियाई बजाई यहाँ बांधे। यहाँ कहते हैं कि आप यहाँ प्रत्येक व्रत बंसी बजाइए कि व्रत की सुख समृद्धि और बढ़ती रहे। बांसुरी जो है लोक मंगल करने वाली है, जो ताप है अनुताप है विषाद है उसको दूर कर देती है। और समस्त चर अचर को कृष्ण भावना से लीन कर देती है। ठीक एक पद लिखते हैं, आसन बांसुरी सोहर प्रकार के पियर बसर सदा पहराला, सावर आनंद मेनु सुकान से ओठन सोन मनोहर माला, बासु भुराई के जोड़ कहाँ जब देखन चान लजात पराला, कोटि न काम निशावर हो बिनु दाम के आप शक्ति बिके जाला, पूनम राख कदम्ब के छाम तेरत बंसी जसोमति छैया, आकुल हो सह मारैया दुखिया से पराई भैया, उठे मन भीतर भीतर दान चतु घन श्याम कन्हैया, आई कहाँ कई शनि प्रवा जब आचर ऊपर शोभत सैया। एक सखी कहती है कि हे सखी, जब मछली बजती है पूर्णिमा के रात में, शरद पूर्णिमा में जब भगवान रासलीला करने जाते हैं, तो कदम के वृक्षों में, कदम के जी में, और पूनम के रात्रि में जब भगवान बंसी बजाते हैं, तो सारी गोपियां व्याकुल हो जाती हैं कृष्ण से मिलने के लिए, और उनकी निद्रा भंग हो जाती है, और सबके मन में एक वेदना होती है कृष्ण से मिलने के लिए, और सब लोग कोशिश करती हैं जाने की, लेकिन कैसे जा सकती हैं, उनके साथ में पति, अपने पति का त्याग कैसे कर सकती हैं, और उनके पति उन्हें जाने से मना भी करते हैं, तो कहती कि हम लोग कैसे आ सकती हैं मिलने के लिए। बाजली बाजली बांसुरिया टगर ब्रज में बांसुरी धुनि छाई, पेड़ लता नव कुंजे तने पेड़ लता नव कुंजे तने, सब गाय गोप उठे हर साई, गोपी नके मती बौरी भई लतली लोक के लाज सदे उठि ढाई, हाथ में पैजन कानन में सर से नूर नन पीछे लगाई। ठीक किसी तरह से वो जाने का प्रयास करती है, तो क्या क्या होता है, जब बांसुरी बजती है तो सारा ब्रजमंडल जो उस धुनि से भर जाता है, और गाय गोपी सब हंस से उन्मादित हो जाते हैं, और गोपियाँ श्रृंगार करने के लिए जब जाती हैं तो उल्टा श्रृंगार कर लेती हैं। रेणु इसमें वर्णन है भागवतम में कि जो पैजनी के जगह बेसर पहन लेती हैं, और सिंदूर के जगह काजल लगा लेती हैं, और लहंगा के जगह ओढ़नी पहन लेती हैं, इस तरह से उनका श्रृंगार जो है उल्टा हो जाता है। मनमोहन के बांसुरी बजली बनता सुधिनार कलिधर के, अति आतुर होई श्रृंगार करे बिचारा सगरी बतिया डर, कजरा घसली दो गालन में मंदिरा चलली मिसिया भर के, लहंगा के जगे ओढ़ली कसली ओढ़ली बनी के लहंगा सर के। मनमोहन भगवान जब बांसुरी बजाते हैं तो एक गोपी जो है अपने गाल में काजल लगा लेती है, और ओढ़नी के जगह लहंगा पहन लेती है, इस तरह से उनका उल्टा श्रृंगार हो जाता है। तो भगवान के बंसी का ये करामात है, भगवान की बंसी का करामात केवल गोपियों पर ही नहीं है बल्कि भगवान के ऊपर भी है। भगवान बंसी के चलते त्रिवक्र हो जाते हैं, भगवान गिरिराज जी को भी धारण किए तो त्रिवक्र नहीं थे, लेकिन बंसी ने क्या तब किया है कि भगवान बंसी को जैसे ही उठाते हैं तो तीन जगह मुड़ जाते हैं, बंसी भगवान को भी आकृष्ट कर लेती है, गोपियों की बात दूर है, बंसी के चलते भगवान त्रिभंग ललित हो जाते हैं, बंसी ने भगवान को मोह लिया। बिहार में लोग गाते हैं कि गोपियां कहती हैं कि तुम बांसुरी क्या तपती हो, तुम हमेशा भगवान के अग्रामृत का पान करती हो, तुम तो हम लोग की सौ तो। बिहार में लोग गाते हैं कि गोपी कहती कि तुम सौ तो हमेशा कृष्ण के साथ लगी रहती हो, कुछ समय तो हम लोगों के लिए दे दो, कृष्ण तुम्हारे अंदर ही उलझे रहते हैं। तो लोग गाते हैं बंसुरी में पद है, आशा का नहीं होता, भाषा में क्या दिया जा रहा था वो समझना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि केवल बंगाली में ही कवि वैष्णव हुए हैं, अन्य भाषाओं में भी भगवान की लीलाएं, संस्कृत है, बंगला है, हिंदी है, उर्दू है, यही समय भी भोजपुरी में जो है वो गलत है। क्या भाव है वो भाव समझना चाहिए। भाषा का अंतर हो सकता है, भाव का अंतर नहीं होना चाहिए, सिद्धांत में भेद नहीं होना चाहिए। तो एक गोपी कहती है गांव में है भोजपुरी में, भोजपुरिया कमर में नदी रहती है, तो मुरली के चलते भगवान टेढ़े हो गए, और मुरली के चलते भगवान ही टेढ़े नहीं हुए, जमुना जी भी टेढ़ी हो गई। जब बांसुरी बजती है तो जमुना भी टेढ़ी मेढ़ी बहने लगती है, कभी कभी जम जाती है, जमुना का जो प्रवाह है रुक जाता है, करीर की कुंजें नीचे झुक जाती है, और यही नहीं ब्रज का रास्ता भी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। इतना ही नहीं, ब्रज की स्त्रियां भी टेढ़ी हो जाती हैं। इतना ही नहीं, भगवान जो हाथ में लपटी लिए हैं वो भी टेढ़ी है। तो ब्रज में ब्रज के कवियों ने लिखा है कि जब ब्रज वृंदावन में बस जाना, बहुत हर जगह टेढ़ा मेढ़ा है, वहाँ के लोग भी टेढ़े हैं, गाली ही देते हैं, गाली से ही बुलाते हैं। वृंदावन में आप जाएंगे तो आपको गाली से ही स्वागत होता है, और वहां कांटे भी बहुत हैं ब्रज में। तो कैसे वर्णन करते हैं कि टेढ़ी बहे जमुना, और टेढ़ो करी लेकी झाड़ी, टेढ़ो गैल को बटन गए, टेढ़ो ही है एक सब ब्रज नारी, देखो टेढ़ो ही दंड को हाथ लिए, वो टेढ़ो खड़ो में हो बांके बिहारी। जो बांके बिहारी हैं वो टेढ़े, उनके जो हाथ में जो छड़ी रहती है टेढ़ी रहती है, आप वृंदावन में बांके बिहारी को देखे होंगे, और टेढ़े खड़े रहते हैं। तो गोपियां कहते हैं टेढ़ों से सावधान रहो, टेढ़ी वस्तु सीधी वस्तु में अगर समाहित हो जाती है, समा जाती है तो नहीं निकल पाती है। भगवान टेढ़े अगर किसी के सीधे सरल हृदय में समाविष्ट हो जाएंगे तो निकल नहीं पाते। और भगवान की लीलाएं भी बहुत टेढ़ी हैं, तो लीलाओं में भी कोई अगर फंस जाता है तो निकल नहीं पाता। तो गोपियां कहते हैं कि हम लोग ऐसे उलझ गई हैं कि इसको छोड़ भी नहीं सकती हैं और निकल भी नहीं सकती हैं। तो बांसुरी और उसमें उन्माद पैदा कर देती है। तो बांसुरी का करामात सर्वत्र है, तो बंसी कोई सामान्य नहीं। एक और पद में है, बहुत सारा पद है, 100 पद में बंसी का वर्णन हुआ है। कुल के सुधिया कुशन रखनी कदी के चलनी लई का घनवा, को छोड़कर चली जाती है, कोई किसी को खाना खिलाने तो भाग जाती है, कोई पानी भरना भूल जाती है, दूध जो है वो बन रहा है उसको छोड़कर कुछ भाग जाती है, कोई कढ़ाई में कुछ बना रहे वो छोड़कर भाग जाती है। सब बंसी से, बंसी के धुन में सब लोग पागल हो गए। एक कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि बंसी में ऐसा कुछ जहर घोल दिया गया है जिससे सब लोग उन्मत्त हो गए, जैसे कुएं में धान घोल दिया गया और उस धान को सब लोग पीकर पागल हो गए। जान परे हम के सखिया पुर में कुछ माहौल घोर न जाला, बांसुरी के बांसुरी जे बजे जब की दे दे करे जब कान पे ताला, बात बुझाए न काबू न बांसुरी पर विधन बानंद लाला, बात के पूरन पूरन गांठ बा पूरन पूरन के मन काला। कभी कहते कि पता नहीं बांसुरी में क्या गुण है कि जिसके ऊपर नंद लाला इतना रिझ गए। भगवान कृष्ण बांसुरी पर ऐसे रिझ गए हैं कि सब भूल जाते हैं, खाना भी भूल जाते हैं। तो गोपी कहते कि बांसुरी के अंदर क्या गुण है, क्या इसमें इसके स्वर में क्या खोल दिया गया है, अगर बांसुरी अगर फिर से बजेगी तो मैं अपने कान पर ताला लगा दूंगा, कान के माध्यम से हृदय में आ बात बुझाए न का बुनबा बांसुरी पर भी जलवानंद लाला, बांस के पोरन पोरन गांठ भाई, इसके हर पोर पोर में गांठ, बांस के अंदर गांठ होता है जगह जगह और पोर के ऊपर काला काला होता है, बांस के जहाँ जहाँ ये होता है गांठ वहाँ काला काला होता है, तो बांसुरी में हर जगह गांठ है और इसका मुंह भी काला है और कृष्ण भी काला, जमुना में भी काली है, सब काला युक्त हो गए। इतना ही नहीं, एक सभी कहते हैं बांसुरी जब बजती है तो सारा ब्रज के जो लोग हैं वो भी काले हो जाते हैं, कालामय हो जाता है, श्याम रंग में, श्याम में सब कुछ हो जाता है, मैंने कृष्ण में हो जाता है, काला का मतलब कृष्ण में हो जाता है। और ऐसा हो जाता है तो लिखते हैं कि जैसे बरसात होती है फिर भी जो कृष्ण के विरह की ज्वाला है नहीं भूलती है, जो कृष्ण के विरह की ज्वाला है नहीं भूलती है, और बरसात में भी जमुना में भी सूख जाती है और फूल पत्ते बरसात में भी मुरझा जाते हैं। और इतना ही नहीं, न किसी को नींद आती है न किसी को चैन आती है। तो लिखते हैं कि बंसी के विरह में सब कुछ विचित्र हो गया है, पद में वर्णन है जमुना सुखात खोल पात मूल सात जमुना सुख नहीं बरसात में, बरसात में जमुना जी में हमेशा पानी बहता है लेकिन जमुना जी सुख नहीं। जमुना जमुना सुखात खोल पात मूल सात बिहन बाजरा जी एक शौक ले सवा बिहन बाजरा। गोपी कहते हैं कि एक शौक क्लेश है, जब बांसुरी बजती है तो इतना क्लेश हो जाता है काम वर्णन नहीं कर सकते हैं। कह दी हसार ब्रज जल बरसात में दिनन चयाननी दियो न आवरात में, और बरसात में भी कह दिया सारा व्रत जले बरसात में, बरसात में व्रत जल रहा है, बरसात में आग बुझ जाती है लेकिन बरसात में व्रत जल रहा है, और जमुना के सुख नहीं है, फूल पत्ते मुरझा रहे हैं और सारे ब्रजवासी बिहार में। तो बंसी की किस तरह मानते हैं, तो बंसी के बारे में फिर लिखते हैं कि सब सब मंत्र से बंसी का जो बंसी मंत्र है श्रेष्ठ है, बंसी सबको अपनी वस्तु है, सब मंत्र या तंत्र क्रिया विधि से मुरली धुनि मंत्र प्रयोग बड़ा, सब लोग कहे रस व्यंजन से अधराम मोहन भोग बड़ा, जहाँ बल खा कटौर सदिखे सब रोग सिद्धि में रोग बड़ा सब ले योग के योग जैसी वह योग से कृष्ण वियोग बना। कृष्ण का जो वियोग है वो सबसे बड़ा वियोग है और सब मंत्र से और क्रिया विधि से मुरली की ध्वनि का जो है प्रयोग बड़ा है। इसलिए लोग कहते हैं कि जहाँ तीर कमानों से काम नहीं चलता है वहाँ भगवान पंछी के तानों से सब कुछ कर लेते हैं। जहाँ न काम होता है तीरों और कमानों से मुरलीधर की विजय होती है मुरली की तानों से। जहाँ अस्त्र शस्त्र काम नहीं करता है वहाँ भगवान मुरली से सब कुछ संपन्न कर लेते हैं। मुरली की इतनी करामा बंसी के ऊपर रिकॉर्ड पर तो समाप्त करते हैं। तो राधा रानी को बहुत इतनी गुस्सा आया तो वो कहती है कि आख बताई से मोहन से मुरली हम राज जरूर चुराई हे कब कुंजन बीच कखी कतनो पूछे हर नाम बतलाई सौ तीन कान के चुमत वो नहीं पी रही जाके कहाँ दे सिपाही बासठ जाने बनी बांसुरी वही बासठ कोठी में आग लगाई। ये बांसुरी ऐसे नहीं सुनने वाली है, मैं आज तो बता दूंगी और जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है उसी की कोख में आग लगा दूंगी। बांस के जो उत्पत्ति है बांस के दुरहट में जाकर मैं आग लगा दूंगी, समाप्त हो जाएगी। इसके बाप दादे बांस कहाँ पहुँचे, नदी के किनारे सरोवर के किनारे, तो बांस नदी और सरोवर का पानी पी करके पेड़ पानी पीते हैं। उत्पत्ति के केंद्र नदी है, इसके माता पिता नदी सरोवर है। तो ये बांस के पोख जो है जहाँ बांस उत्पन्न होते हैं इसी में आग लगा दूंगी या नहीं तो इसको देख करके पत्थर पर छोड़ दूंगी। चील जोड़ा होता है मसाला पीसने वाला उसके ऊपर मैं छोड़ दूंगी। ले दो हवा चीनी आऊ पर कुछ देकर किसे मुंह माधर ही तो रो ना कड़िए तो ना कड़िए उड़ मुड़ी करो मुड़ी तो हार जरूर मरो रो सौ तीन के संग कौन सकोच तो है मुरली मज धार में बोल बोली नया जब भले पर काल तो है जमुना में बहाई के छोड़ राधारण कहती है आज तुम बोल लो लेकिन कल तुमको बोलने का अवसर नहीं मिलेगा, तुमको मैं तोड़ दूंगी और जमुना में बहा दूंगी, आपको बोलने के लिए अवसर भी नहीं मिलने वाला, आपको मैं चील के ऊपर पत्थर के ऊपर तोड़ दूंगी। कर में बसुरी बिहते हर के रख ले संग मही घर में बन में कब हूँ अथवा कब हूँ धरा सदई सतले रख ले तन में कब हूँ कसिया कब हूँ कटि में बिछुरी सी पड़ी जैसे घन में कसिया सब की भई सजनी जनी का कशिता सदा मन में। राधा रानी कहते हैं कि ये तो ऐसे हमेशा भगवान के अंदर सदी रहती है, कभी हाथ में कभी बगल में कभी तो छिपी रहती है जैसे बादल में बिजली छिपी रहती है और ये कभी साथ छोड़ने के लिए नाम नहीं देती है। ये तो बड़ा खेद का विषय है, राधा ने इस तरह से पश्चाताप कर दिया। बांस के कोख में मुरली जो है बनी है और जदु बंश के ऊपर मनमानी राज कर रहे हैं और राधा रानी पटरानी बने या ना बने बांसुरी पटरानी बन गई। बांस के कोख पर मुरली जदु बंश पर राज करे मन मानी राधिका रानी बने न बने पर ही बंसुरी बन गई पटरानी कौन भारा कौन बांसुरी में हम के ही बता रहे हूँ वो चोरी गई जब से मधुरी तब से छोड़ना हरि भोजन पानी। जब भगवान की बांसुरी चोरी हो गई तो भगवान खाना पीना छोड़ दिए। तो राधा रानी कहते कि बांसुरी हम पटरानी बने या न बने, बांसुरी पटरानी बन गई है और पूरे जदवंश के ऊपर राज कर रही है। और ये बांसुरी में क्या गुण है कि जब से बांसुरी चोरी चली गई है तब से भगवान भोजन पानी छोड़ दिए। एक दिना जब मांगत बांसुरी कृष्ण कन्हैया से राधिका प्यारी, राधिका प्यारी के पेंच में सारी संवारी के नाचन लागे मुरारी, नाचन लागे मुरारी के देख भवानी के संग में बैठी पुरारी, बैठी पुरारी माँ से कहे मुरली से बनी हरी, मुरली से बने हरी मंद्र से नारी। एक दिन बांसुरी के लिए भगवान राधा रानी से कहने लगे मेरी बांसुरी को दे दो। तो राधा रानी ने कहा कि आप नृत्य करो, नाचो, तो नाचोगे तब बांसुरी दोगे। तो भगवान नाचने लगे, ऐसे नाचने लगे नाचने लागे मुरारी के देख। भगवान कृष्ण को नाचते देखकर शिव जी भी नाचने लगे। नाचने लागे मुरारी के देख भवानी के संग में बैठी पुरारी, बैठी पुरारी माँ से कहे मुरली से बने हरि मंदिर से नारी। और मुरली के चलते भगवान गोपी बन गए। मुरली के दादाजी ने कहा कि हम नृत्य करो, तो भगवान गोपी बनकर गए थे और नाचने लगे। तो उनका नृत्य देख करके शिव जी नाचने लगे। नाचत गावत में बंसियाली हरि यति के विषभानु दुलारी, रात रचावत बांसुरी के बल सोचत बारी बारी प्यारी, बंसी नचावत एक से एक के तारद शेष गणेश पुरारी, बाए करावत में सब रोजग बांसुरी के महिमा बड़ भारी। बांसुरी की महिमा बहुत बड़ी है, इसके बस में सब हैं, शिव हैं, शेष हैं, गणेश हैं, सब बांसुरी के अधीन हैं। इसकी महिमा का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। सोच विचार करी मन में मति राउर बाउर बावन बारी, बात के ओठ लगावत चमत कान सजे कतने ब्रज नारी, बात बनाई कहीं है मना सब लोग कहे जे कहा उत भारी, गाँव के भाग में नाच दिखाई जब पूरे जहाँ से उठे बसवारी। लोग कहते हैं कि जहाँ बांस में जब फूल आ जाता है तो लोग कहते हैं कि अब गांव का नाश होने वाला है। तो बांस की बांसुरी जो ऐसे बज रही है लगता है पूरे ब्रज का नाश कर देगी। सब लोग बंसी की आवाज से सब भूल गए, अपना घर द्वार मकान खेती गृहस्थी सब संसारिक काम को लोग भूल गए। तब ब्रज में ऐसा लगता है कि अब प्रलय होने वाला है। नारायण कहते हैं बांसुरी सबको अपने बस में कर ली, मुठ्ठी में कर ली। और ये दो वंश के जो नायक हैं श्री कृष्ण, इनको तो अपने बस में कर ही लिए, और भी जितने चार आचार सबको अपने अधीन कर लिए। और इसके अलावा और कोई नहीं, क्या कहा जाए, लगता है अब प्रलय हो जाएगा। वेणु जी इतनी गोपियाँ इस तरह से वेणु जी के प्रति सब कुछ आकृष्ट हो जाता है। भगवान वेणु जब बजाते हैं तो मोर नृत्य करने लगते हैं बंसी से, हरिणियाँ आ जाती हैं दर्शन करने के लिए और गायें भी आ जाती हैं कृष्ण को घेर लेती हैं और भौरे भी गुंजार करने लगते हैं, विविध प्रकार के पक्षी कलरव करने लगते हैं, मानो बंसी के स्वर में स्वर मिला रहे हैं और सारे गोप गुआल नृत्य करने लगते हैं। अद्भुत दृश्य उपस्थित हो जाता है ब्रज में। बंसी जो है ऐसा दृश्य उपस्थित करती है तो दृश्य जो है अद्भुत हो जाता है। और गिराज के ऊपर जो पेड़ पौधे हैं वो भी खिल जाते हैं बंसी के बाद, वो भी झूमने लगते हैं। जमुना जी की लहरें ऊपर आ जाती हैं और जमुना जी में जो फूल हैं वो जमुना जी मानो अपने जल रूपी लहरों के हाथ से पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर रही हैं। और बादल आकाश में छा जाते हैं जैसे मानो भगवान के ऊपर छत्र किए हैं। इस तरह से बंसी से सारा वातावरण बदल जाता है, दिव्य हो जाता है। तो बंसी भगवान की सखी है, वो लोग बंसी प्रिय सखी। बंसी ने यह अद्भुत करामा सिखाया है। तो भगवान बंसी से ही भगवान की पहचान होती है। भगवान अगर बांसुरी नहीं लेते तो भगवान कैसे लोग पहचान, और देवी देवता अलग अलग अस्त्र लेते हैं, शिव जी त्रिशूल धारण करते हैं, भगवान श्री राम धनुष बाण धारण करते हैं, दुर्गा जी अपने आठ हाथों में खड़ग और बहुत सारा त्रिशूल धारण करती हैं, लेकिन कृष्ण को कोई भय नहीं, निर्भय है। सब देवी देवता अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं, उनको भय है, लेकिन कृष्ण को कोई भय नहीं, तो केवल बांसुरी लिखे इसे सिद्ध होता है कि कृष्ण के जो समीप जाता है उसका भी भय दूर हो जाता है, और देवी देवताओं के शरण में जाने पर भय बना ही रहता है, तो भगवान निर्भय है। इसलिए बंसी का जो वर्णन करता है और बंसीधारी का जो वर्णन करता है तो भी निर्भय हो जाता है। हरे कृष्ण। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम की जय। ठीक है।